राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 मई 1993 साय लगभग 4 बजे गीता वंशवर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः।
पहले हम लोग सत्संग करते थे उस समय वर्षा आ जाती तो वर्षा में कीर्तन करते है और वर्षा बढ़ती रहती है तो सम्भव उठाई नहीं वो वर्षा करते हुए दादा जी तो खड़े हो जाते नाचते कीर्तन करते वर्षा में तो वर्षा अगर ज्यादा हो तो फिर कीर्तन करें जो कीर्तन करा तो कीर्तन और अच्छा बढ़िया होता है। बातें सुनने में तो बाधा होती है किसे सुनने करने के बाद अभी होगी और आप लोग यहाँ आ जाओ तो क्या जगह बड़ी खाली इतना काम में ले लो। अब पूछो
ऐसा विशेष प्रश्न नहीं है जैसा आप चाहते हैं।
अब है जैसे ही गुरु में क्या करें सज्जन हंस विदेश गए बसंत सज्जन हंस विदेश गए मिलन महंगे मोल बिन कटनी अब कीजिए बुगला से हंस बोल सज्जन हंस विदेश गए मिलन महंगे मोल बिन कटनी अब कीजिए बुगला से हंस बोल तो पर है जैसे को शेर जी ने कहा कि भाई सत्संग करो तो लोग थोड़े आए कि लोग तो आए ही नहीं तो मैं क्या था आयोजन करो एक थोड़ी सी कहानी उसको कहा कहानी सिर्फ तेरे कौन जाएगा तो कहानी है कि नहीं जाएगा मेरे बहन भाई वो खिलाऊंगी बैठी हुई है नहीं सही तो शेर जी कहते थे बहुत थोड़े आदमी आए कमल बहन भाई खिलाएंगे हम तो बहन भाई खेलेंगे थोड़े थोड़ी आ जाए तो है जैसे पूछो
के गंगा जल हर की पेड़ी से भरे या गीता भवन के सामने से भरे
ये दोनों बात है। ये वहाँ ब्रह्म कुंड की विशेषता है जहाँ जहाँ सप्त ऋषि महात्मा तप किए है वहाँ गंगा की विशेषता हो गई तो वे है तो यहाँ भी तो गंगा की विशेषता ही है। बरसों से सत्संग होता है यहाँ पर उस बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत महात्मा नाते ही है तो ये भी एक स्थान है आप जैसे मर्जी हो ज्यादा प्रसन्नता होगा। सुनिए
गीता भवन के सामने से ले जाया हुआ गंगा जल ज्यादा दिन टिकता नहीं है और हर की पेड़ी वाला टिकता है क्या बात सत्य है?
हमें तो ये विश्वास नहीं है हमारे विश्वास में हाँ तो क्या हमारी बड़ी दे दो हमारे आग्रह है ही नहीं तो ज्यादा टिकर वो कम टिके ये मेरे लिए समझ में नहीं आता। गंगा जल तो वही है आपने चतुराई से ठीक से रखा नहीं होगा कोई अन्न का और हाथ लग गया होगा।
कल आपने कहा कि अमान लगाने वाले कुमार और तेली इनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए तो फिर क्या इनका बनाया हुआ घड़ा और तेल भी नहीं लेवे?
ना ले घड़ा उनको वापस दाम दे देते हैं अपने तो पैसे देकर देते हैं ना तो पैसे देने से वो चीज हमारी हो जाती है, वो उनकी थोड़ी गई। कुम्हार को घड़े के पैसे दे देने के बाद घड़ा कुम्हार के थोड़ी रहा, तेल खरीदने के बाद तेल तेल का थोड़ा ही रहा। ये मामूली बात नहीं, तो अपने खरीदने पर अपना हो जाता है। कई घरों की ऐसी बातें हैं वो पैसों से भी नहीं होती। जैसे किसी के बच्चा पैदा हुआ, किसी के घर का मरना हो गया, तो उसे भी सोचते तो उसमें पैसों से भी चीज नहीं लेनी चाहिए। ऐसे कष्ट के ऐसे धर्म शास्त्र बहुत है, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु बड़े बड़े पोथा है, उनमें ऐसी बहुत सी बातें हैं, तो शास्त्र को देखना चाहिए।
गीता विष्णु सहस्त्र नाम सहित जो छपी है उसमें वंशी विभूषित करा जिसका आप मंगलाचरण करते हैं, श्लोक आजकल उस पुस्तक में निकाल दिया है, क्या बात है?
नहीं, पहले थोड़ा ही था, ये पहले था,
चित्र के नीचे आता था।
हाँ, चित्र के नीचे आया, मैं पुस्तक में नहीं था ना, चित्र के नीचे आया, तो चित्र के नीचे आज भी चित्र देवदान चाहिए। वो मूल में है वंशी विभूषित का आशीर्द नहीं है, ये मधुसूदनाचार्य का बनाया हुआ है, ये कोई वेदव्यास का नहीं है, विश्वास गीता के भीतर ये नहीं है, गीता विष्णु नहीं है, मधुसूदनाचार्य का, जिन्होंने गीता पर गूढ़ा जी का टीका लिखी है संस्कृत में, उनका।
गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है?
गाने वाले को रक्षा करे, गायकम गायत्री गायत्री, जो उनका जप करे उनका उद्धार कर दिया।
जनेऊ धारण करने के बाद गायत्री मंत्र द्वारा संध्या पूजन आदि करने का आपने फरमाया है, तो ये किस भाव से ध्यान पूजा करनी चाहिए?
ध्यान पूजा अपना इष्ट कर सकते हो, ऐसे तो त्रिपदा गायत्री है, तीन पदा में तीन त्रिपदा है ना, आठ से चौबीस, तो चौबीस अक्षर होते हैं, ऐसे तेईस ही होते हैं पर चौबीस अक्षर होते हैं, तो त्रिपदा गायत्री है, तीन चरण है, आठ अक्षरों का एक चरण होता है, चार चरणों का एक श्लोक होता है, ये त्रिपदा है, तो त्रिपदा में तीन बातें बताई है, एक तो उसका स्वरूप बताया है और एक उसे ध्यान बताया है और एक प्रार्थना बताई है, स्वरूप ध्यान और प्रार्थना, ये तीन मिला हुआ गायत्री है जो रक्षा करने वाली है। तो ध्यान परमात्मा का करें और स्वरूप परमात्मा का है ही, उस परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को शुद्ध करें।
जनेऊ लेने के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए?
खास कर तो संध्या करना चाहिए, संध्या करने की खास बात है और ज्यादा नियमों की नहीं है बात, बड़ी सीधी बात है, तीन वक्त संध्या करना, तीन न वक्त तो कम से कम दो वक्त सुबह शाम, और वो भी सुबह की संध्या तारों के रहते होते उत्तम होती है, तारों के लुप्त हो जाए सूर्योदय न हो मध्यम होती है, और सूर्योदय के बाद में कमिश होती है, और सूर्य अस्त के समय सूर्य रहते हुए संध्या उत्तम होती है, और सूर्य अस्त हो जाए तारे नहीं हो मध्यम होती है, और तारे हो जाए तब वो कमिश हो जाती है, तो उत्तम संध्या करनी चाहिए, सुबह तारों के रहते हुए शाम को सूर्य के रहते हुए, मध्यान्ह की संध्या भोजन से पहले करनी चाहिए, ऐसे तीन संध्या होती। और पूछो कोई मनवाओ तो पूछो भाई, नारायण 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 नारायण।
गीता के नौवें अध्याय के बत्तीसवें श्लोक में कहा है, मामी पार्थ विकाशते ये पिस्यु पाप योनया, स्त्रियों वैशा तथा शूद्रास्ते की अंति पराम गति। इसके बारे में भगवान ने अपने श्रीमुख से वैश्यों को भी स्त्री और शूद्र की कैटेगरी में के वर्ग मिला के रखते हैं।
ठीक है,
तो वैश्य में ऐसे कौन से अवगुण या दोष हैं जिस कारण से भगवान ने ऐसा कहा? और दूसरा भाग ये है कि ये भी गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो भी शब्द लगाने से या तो पुष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है, भी शब्द लगाना किसी बात को पुष्टि करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कोई बात को महत्व देना हो, दृढ़ता पूर्वक बताना हो तो ऐसा भी होता है, ऐसा कहा जाता है। और या फिर कोई ऐसा अयोग्य हो तो वो भी तर जाता है। तो ये मेरे प्रश्न के दो भाग हैं कि उनको इस कैटेगरी में भगवान ने रखा, वैश्य में कौन से ऐसे अवगुण दोष हैं, और फिर वो तर जाते हैं तो क्या ये अयोग्य हैं?
ठीक है, यह गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने बताए हैं कि इनका उद्धार हो जाता है। तो वहाँ चार तो वर्ण है, एक से पांच है, एक दुराचारी है, एक पाप योनि है, ऐसे बताए सात। उन सातों में पहले अभिषेक शुद्ध दुराचार हो, अत्यंत दुराचारी को नाम लिया पहले, पानी जिनके आचरण खराब है, खान पान जिसका रहन सहन बहुत नीचा है ऐसा, अथवा जो सूर्य योनि में है, हरिजन योनि में है, ऐसे पाप योनि में। पाप योनि का तात्पर्य पूर्व के किए हुए पापों के कारण से नीच योनि में जन्म हुआ, उसमें गीब है, गजराज है, हनुमान जी महाराज है, जामवान है आदि, ये भी आ जाते हैं पाप योनि में। कोई पापों के कारण से होते हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज तो अवतार है, भी तो भक्त है, परंतु इस योनि में होने वाले भी अपना उद्धार कर देते हैं। पाप योनि बड़ा व्यापक शब्द है, उनका उद्धार भी होता है। ये पीछे पाप योनि है। और अभी चाहे सुदुराचार सबसे पहले दुराचारी लिया, वर्तमान में जो आचरण जिसके खराब है वो सबसे नीचा होता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्यों नहीं हो, आचरण खराब हो या आचरण भ्रष्ट है, आचार ही नंग न पुनंग वेदा, आचार ही उनको वेद ही पवित्र नहीं कर सकते, ऐसे आचरणों में अत्यंत पवित्र है, वे भी मेरे शरण हो जाए तो वे भी तैर जाते हैं। अपचेद प्राप्त ज्ञान ने बताया है, अपचेदी अपिशब्द दिया है, जो भी अपि कहते हैं तो अभिमान वे भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसमें भी अपिशब्द दिया है। इसके बाद बताया कि ये पीसु पाप यो, ये पीसु पाप यो नया, तो पाप यो नया और स्त्रियों वेशास्त्रा सूद्रा क्या लिए, पाप यो नया स्त्रियों वेशास्त्रा सूद्रा, तो इसमें वेश्य को नीचा क्यों बताया? ये नीचा बताना तात्पर्य नहीं है, इसमें स्त्रिया शब्द आया है, स्त्रियों वेश्याशब्द, स्त्रिया ब्राह्मणों की भी स्त्रिया होती है, क्षत्रियो भी स्त्री होती है, और वेश्यों की भी स्त्री होती है, शूद्रों की स्त्री होती है, तो स्त्री में ब्राह्मणों की स्त्री भी आ गई, तो उनको नीचा क्यों बताया? तो नीचा बताना तात्पर्य नहीं है, ये तीन श्रेणी करी है, एक तो अत्यंत दुराचारी और एक पाप योनि, मन अवार के पापी है, एक पूर्व के पापी है। इसके सवाल अंत में दो लिया है, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता आदर्श है तथा पुण्य पुण्य ब्राह्मणा ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ में पुण्य शब्द दिया, और ऋषि राजा राजन शब्द के साथ ऋषि शब्द दिया, तो ये दो शब्द दिए, ये क्यों दिए हैं? पूर्व में आरंभ में जो बताया कि अभिषेक सुदुराचार है, तो दुराचार से रहित इस बात को पुण्य दिया, और एक पाप योनि है जो पापों का निश योनि में नहीं है, उसके लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द दिया, और पवित्रता के राजा शब्द दिया। आप समझिए ना, थोड़ी सी बंद करो बड़ी समझ आएगा। मानो पहले दुराचारी और फिर पाप योनि, तो दुराचारी तो वर्तमान पाप, वर्तमान में पाप करते हैं, और पाप योनि जिनके पूर्व के पाप थे। ये लिए अब किम पुनर्ब्राह्मणा बताया, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो विशेष माने जाते हैं। द्विज में वेश भी साथ में है, परंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय दो विशेषता से लिए गए। न स्ववृत्या कदा, ब्राह्मण और क्षत्रिय को नीची वृत्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसे शास्त्र में बहुत वर्णन आता है। तो वे ब्राह्मण और क्षत्रिय लिए उत्तम, जन्म से उत्तम, और वो दुराचारी है जो जन्म से उत्तर है परंतु आचरणों से खराब है। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, तो पुण्य करके आचरण में आचरण श्रेष्ठ है, जन्म में भी श्रेष्ठ है। पहले जन्म के भी पाप नहीं है, अभी के भी पाप नहीं है, ये दो बातों उनमें ऐसे शक्ति है। वे राजर्षि, राजा होते हुए भी ऋषि है, तो वे अभी आश्रम में भी ठीक है, जन्म में भी ठीक है, इन दो की विशेष वर्णना शास्त्रों में आती है। तो दो के बाद पहले लिया उनकी एवज में तो ये ले लिए, अब बीच में कौन रहे कि स्त्रियां रही, जो स्त्रियां चारों वर्णों की होती है, इसमें ब्राह्मणों की स्त्रियां है, बड़ी बड़ी ऋषि पत्नियों में भी तो स्त्री शब्द ही आती है, इनको भी निष्कृष नहीं है। ये पीछे पाप होने स्त्री हो और वेश्या, वेश्या है उसमें क्या अवगुण है, उसमें अवगुण नहीं है, अवगुण के कारण नहीं है। वेश्य ब्राह्मण शक्तियों की अपेक्षा नीचे जाने जाते हैं, ये तो है ही, तो अपने वर्ण के अनुसार है। ये वर्ण साल तो अपने छूलवा चल लिया, पाप योनि ले लिया, तो उसमें वेश्य की क्या बात है। दूसरी जगह वेश्यों को द्विजातियों में दिया है, जैसे सारवें अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम और शूद्रायण, तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम एक पद में लिया और शूद्रायण अलग लिया, तो ये द्विजाति है। इस वास्ते ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ये एक है, दोनों ही तीनों ही है, जिन्हें वो अधिकारी है, वेदों के अधिकारी है, इस वास्ते वहां ऐसा ले लिया। यहाँ पर ये बात बताई कि अधम से अधम, उत्तम से उत्तम दोनों लिया, अब बाकी क्या रहा, स्त्रियों रही और स्त्रियों है और वेश रहे, तो वेश तो स्त्रियों को एक समान ही माना है, तो ब्राह्मणों की स्त्रियां जितना है, गौरी गंग समाना रामायण में आता है, ब्राह्मणों की स्त्रियों का बड़ा आदर किया है, ब्राह्मणों की स्त्रियां है, उसमें क्षत्रियों की स्त्रियां भी है, वेश की स्त्रियां भी है, शूद्रों की स्त्रियां भी है, तो स्त्री जाति में सब ले लिया गया। तो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय विषय चारों वर्णों की स्त्रियां ली गई, तो इसको निकृष्ट कैसे जाए, ब्राह्मणों की स्त्रियों को निकृष्ट कोई है, स्त्रियों वेश शूद्रा स्त्रियां और वेश, जैसे स्त्रियां कह दिया ऐसे वेश शास्त्र में कह दिया, तो वेश भी जाति है, अधिकारी है, तथा शूद्रा शूद्रों को अलग लिया, परांगति वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्रियां है वो मामूली मान जाती है। पादरी जी ने रामायण में प्रश्न किया है, मैं यदि भी जोशी था अनधिकारी, मैं स्त्री हूँ इस वास्ते अनधिकारी हूँ, परंतु आप कृपा करो बताओ, तो ये छोटी बताया। ये एक बड़ी मार्मिक बात इसमें है समझने की, इसमें छोटी बताते हैं तो तटस्थ गणना करने वाले वे, परंतु ये ब्राह्मणों को अधिकार नहीं है कि क्षत्रियों को वेश्यों को स्त्रियों को शूद्रों को नीचा माने, ऐसा माने तो अभिमान होगा, अभिमान है वो अभिमानी परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी नहीं होगा। आज कहते हैं हम वो हम ब्राह्मण बन जाए, अरे क्यों आपस में पढ़ते हो, जितने ऊंचे वर्ण पढ़ेंगे उसमें जिम्मेवारी ज्यादा होगी, जिस नीचे वर्ण में उनमें जिम्मेवारी कम है, उनका कल्याण सर्वप्रा से होता है, जितने ऊंचे होते हैं उन पर जिम्मेवारी ज्यादा, बड़ी कठिनता से कल्याण होता है, बालक होते हैं मस्ती में, तुम्हें उन पर घाटा लगे टोटा लगे दुख आवे परवाही नहीं, उनके जो मुंह बड़े हैं वो भोगो घाटा घाटा दुख वे भोगो, इस तरह से वर्ण में आश्रम में जो ऊंचे हैं ان کے لیے زیادہ ذمہ داری ہے, کٹھن کا زیادہ ہے, جتنے چھوٹے ہیں ان کے لیے سگمتا ہے. تو سیاں اپنے کو چھوٹی مانے یہ تو ہے بھوشن, اور دوسرا نیچی مانے یہ دوشن ہے. ایسے سوری اپنے کو اونچا مانے جیسے کلجگ آئے گا تو سوری کہے گا برہم جان کر ناڑ نہ کریں دوسری بات ہم مطلب کچھ گھاٹ ڈانک دے گا وہیں ہٹ پہ براہمن سے کہتے ہم کیا ہے ہم سمجھ چھوٹے سوری ہیں. ایسے ابھیمان کرنے والے بہت نیچ ہے, ان کا ادھار نہیں ہوگا. ان کا ادھار کیسے ہو جائے گا؟ ابھیمان ہے, بھگوان کو ابھیمان اچھا نہیں لگتا. تو ابھیمان دیشتوا دینی پریتوا. اب آری سماج میں کیا بھی جاتی ہے اپنے کرم سے مانو, تو کرم سے جاتی میں براہمن تو کئی بن گئے سوری اور کئی, مگر سوری اور تمہار بنے ہی نہیں کرم سے نیچے. اس آسن میں بھرشٹ ہونے والے میں براہمن کھتریا ویش شودر استریاں سب آ جائے گی. جو جو دوراچاری ہے آسن میں بھرشٹ ہے بھی آسن بھرشٹ سب آ جاتے ہیں پہلے میں ہی. تو سب سے پہلے ان کو لیا. کیوں لیا؟ کہ پہلے بتایا سموہم سروپوتیشو, یہ یہاں چلتا پرکرن کہ سموہم سروپوتیشو نمے دیشوسی نپریہ. صاف شبد کہہ دیا کہ سمپورن پرانیوں میں, منشیوں میں نہیں, پرانیوں میں ستھاور اور جنگم بھی آ جاتے ہیں. یہ ستھاور تیل آدی یہ بھی آ جاتے ہیں اور جنگم آ جاتے ہیں. سموہم کے اوپر میں سمان ہوں, تو بھگوان کی سمان کرپا ہے, سمان بھگوان ویاپک ہے, سمان سب مم پری سب مم اپجائے, میرے اپجائے سمان میرے کو پیارے ہیں. تو سموہم سروپوتیشو دیا, تو سموہم میں کیا ہے؟ یہ سب آ جاتے ہیں سموہم میں. تو سمے سمان ہو اسے سب سے پہلے گروچاری کو لیا, کیونکہ آچرن برش ہے. آچار ہین بھنتی ویدا, آچار جن کو بید بھی پوتر نہیں کرتے. تو آچرن سے پہلے سال سب سے نیچا آچرن ہین وہ لیا ہے جس کے آچرن برش ہے, وہ چاہے براہمن ہو چاہے کھتری ہو ویشی ہو شودر ہو, چاہے وہ برہمچاری ہو چاہے گرست ہو چاہے بانپرست ہو چاہے سنیاسی ہو, سنیاس بھی لے لیا ہے. پرنتو اس کے آچرن اگر برش ہے تو وہ بہت زیادہ پتت ہوا ہے. براہمن ہو کر سنیاسی ہو کر جو ان نیموں کا بھنگ کرتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ پاپ لگتا ہے. تو یہ ذمہ داری زیادہ ہے, ایسے آسرم سے نیچ ہے پہلے جنم سے نیچ ہے, ان کو زیادہ اتنا آفت نہیں کرنی پڑتی, وہ اتنے بھرش نہیں ہوتے. جیسے انتجوں کے لیے لہسن پیاز آدی کا دوش نہیں ہوتا ہے, آپ سے آپ مرے ہوئے پشو کا بھی دوش ان مانس کا نہیں ہوتا ہے, اور بڑے ہوئے آدمیوں چینٹی مر جائے تو اس کا پاپ لگتا ہے, چوہا مر جائے تو اس کا پاپ لگتا ہے. سندھوں میں ان کے الگ الگ پاپوں کا پرائشچت بتایا ہے. تو جتنے چھوٹے ہیں ان کی چھوٹ زیادہ ہیں, اور بڑے ہیں جن کی زیادہ ذمہ داری ہے. تو وہ سب بتایا, سب سے نیچا دوراچاری اور اس سے پرانے پاپ پاپیوں نے, اور وہ اتم دونوں بتا دیا. آسنوں سے بھی اتم ہے, جنم سے اتم کم پنیہ بتا دیا. اب بیچ میں کیا رہے؟ کہ استیو ویشیاستھا سوریا, تین استیو ویشیاستھا سوریا. تو وہاں میں استریاں بتا دی, سب پہلے استیو ویشیا ویشیا دو نمبر بتایا کہ استریوں کو اونچی کیوں بتائی, کہ براہمنوں بھی ہے کھتریوں بھی ویشیوں کی سب کی استریاں ہیں. استریوں میں کوئی معمولی بات نہیں, سب استریاں جاتی استری جاتی مات. تو استریو ویشیا اور ویشی لیا. پھر تو دوجاتیوں میں ویشی ہے اور دوجاتیوں کے بھی ساتھ میں استریوں بھی ہے. استریوں کا بھی جب اب جنم لیتے ہیں تو بیاہ سے پہلے جنم لینا چاہیے. پہلے بیاہ سے پہلے جنم لینے سے ان کی استری بھی دوجاتی ہو جائے گی, شدھ ہو جائے گی. اس واسطے جنیو کا آپ نے دیکھا ہوگا, پرشوں کے جنیو کا تھوڑا سا دو جنیو لیتے ہیں. تو دو جنیو کیوں لیتے ہیں؟ اس میں دو کارن ہیں دو جنیو پہننے کے لیے. ایک تو استری کی آئے گی خود کی, وہ جنیو کے باغی کرنا کام کرنا تو پرشوں کا ہوتا ہے, اور استری اس کا بنا کیے اسی پنیہ کی بھاگیدار ہو جاتی ہے. یہ دھرم پد بھی ہے, जितना धर्म करे पुरुष उस पुरुष के धर्म के आधी भागीदारी स्वतः हो जाती घर में बैठे बैठे ही। तो एक तो उसकी जनेऊ है पुरुष के एक वो। एक दूसरी बात ये है कि जब संध्या गाती आदि करे तो कंधे पर कपड़ा रखना चाहिए, यहाँ इस बाएं कंधे पर कपड़ा रखना चाहिए तब वो संध्या ठीक होती है। तो इस पर बस धारण करे तो दो जनेऊ होने से एक दो जनेऊ की जगह हो गया, एक कपड़ा बस पर न रहे तो जनेऊ हो गई कपड़े की जगह। इस वजह से दो जनेऊ होती है। तो स्त्रियों की सब जिम्मेवारी पुरुषों पर होती है, स्त्रियों पर पुरुष नहीं है। इस बात के ढोल गवार सूर्य पशु नारी कर दिया तो नारी का तिरस्कार नहीं है, नारी के ऊपर कृपा ज्यादा है, उसका कल्याण ज्यादा जल्दी होता है। ये बात मैंने कही है व्यास जी महाराज ने, स्त्रियों तुम धन्य हो, कर्दु तुम धन्य हो, शूद्र तुम धन्य हो, इनको धन्यवाद दिया है। तो इनका जल्दी कल्याण होता है, उद्धार कर्दु में जल्दी होता है, स्त्रियों का जल्दी होता है, शूद्रों का जल्दी उद्धार होता है, इस वास्ते उनको धन्यवाद दिया गया है। तो ये स्त्रियों वेश्या सूर्य, स्त्रियों वेश्या तथा सूर्य का, तो सूर्य भी होते हैं वे दिनों का अधिकारी भी नहीं होते और दूसरे हरेक वेद आदि का अधिकारी नहीं होते, तो ते भी आंति प्रदान करते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो परम गति में प्राप्त वे भी हो जाते, इस वास्ते अपशब्द आया है कि उनका भी कल्याण हो जाता है। तो कल्याण में फर्क नहीं रहता, अपशब्द है वो गौणता का द्योतक है और उच्चता का भी द्योतक है। वे भी कहने से वे छोटे हैं, ये है परम गति में प्राप्त हो जाए तो जिस परम गति को ब्राह्मण प्राप्त हो गए, पवित्र ब्राह्मण और सत्य पवित्र, उसी गति को प्राप्त हो जाते, वे भी उसको प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कभी कभी क्या आई। तो ये अपशब्द के दोनों भाव आते हैं, इस वास्ते अपशब्द आया है। तो वास्तव में सबका कल्याण हो जाता है, कोई भी समूह हम स्वरूप भूतेषु प्राणी मात्र में कोई भी भगवान का भक्त हो जाए तो उसमें सबके ऊपर मेरी कृपा है और सब आप कल्याण कर सकते हैं। कल्याण की प्राप्ति में कोई कमजोर नहीं है, ये तात्पर्य है इसका। चाहे वर्ण में छोटा हो, आश्रम में छोटा हो, विद्या में छोटा हो, धन में छोटा हो, पर मुक्ति में छोटा है ही नहीं। व्यवहार में छोटा बड़ा होगा, वो व्यवहार में जो पद को लेकर आज समार है मैत्र है, वो भी पद पर ऊंचा हो गया तो वो भी बड़ा माना जाएगा, आज जैसे ही बड़े पद पर आ गया तो पद पर आने से वो बड़ा हो गया, अब उनको बड़ा थोड़े ही मानेंगे। मास्टर आजकल हो जाते हैं निश्चित जाति वाले भी, तो उनके लिए ये आया कि वो पढ़ने के समय उनको माने श्रद्धा के लिए नहीं, और ब्राह्मण हो तो श्रद्धा के लिए उनको गुरु माने जिससे विद्या ली है इस तरह से। तो वे बड़े हो गए तो पद आदि को लेकर के हो गए, तो वे वास्तव में बड़े नहीं है। बड़े तो जिनमें आचरण अच्छे हैं वे बड़े हैं वास्तव में ये, और अच्छे घरों में जन्म लेने वे भी बड़े हैं। तो सब परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी है। सब होते हुए भी एक बात विशेष बता मैं आपको, चारों वर्णों का जहां वर्ण है वहां ब्राह्मणों के लिए नौ धर्म बताए, समो दम तप शोचम शांति आर्जमेव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, नौ धर्म पालन करा ब्राह्मण के लिए, और क्षत्रिय के लिए शौर्यम तेजो धीर्ति दाक्ष्यम युद्ध पदानम दानम, ये छह लिए, और वेश के लिए कृषि गोर सुबर्ण तीन लिए, और सूर्य के लिए एक लिया परिचर्या दो कर्म। अपने अपने धर्म का शेष भी कर्मणी अभिजता संसिद्धि लभते नरा, तो ब्राह्मण के नौ धर्म पालन कल्याण होगा, क्षत्रिय के सात धर्मों से कल्याण होगा, और वैश्य का तीन धर्मों पालन कल्याण होगा, और सूर्य एक धर्म से पालन हो जाएगा। तो जिम्मेवारी जितना बड़ा उन पर ज्यादा ली गई है, उनका तिरस्कार नहीं उनका आदर किया, पर उन पर जिम्मेवारी ज्यादा है। अब नौ धर्म पालन किए, नौ धर्म में पैसा ही पैदा नहीं होगा, समो दमा तप शोचम शांति आर्जमेचर ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, एक कोटि पैदा नहीं, धर्म पालन करेगा नौ, और जीव का ही नहीं, पैसा 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 होता ही नहीं, ऐसा पालन करेगा नौ सौ ब्राह्मण का कल्याण होगा। तो ब्राह्मण को ऊंचा कह दिया, ऊंचा में तो आप हस है, नीचे में मौज है। ये है मेहंदी लगे हुए ऊपर कपड़े निकालती है, नीचे से खूब मौज से फैलती है, कोई बात नहीं उनकी, तो ऊंचा ऊपर कपड़े निकालती है भाई। तो एक बड़ा मानते अपने को जिम्मेवारी ज्यादा होती है। और खर्ची सात धर्म है, सात में युद्धेतर पदा है, इसमें अगर माथा कटा हुआ तो उससे जायदाद मिल जाती है, विजय हो जाती है। पर सिर के साथ होती है कठिन प्रा से जीव का पैदा होती है। और सातवें में समो शौर्यम तेजो धृष्टि दाक्ष्यम, दाक्ष्यम है चतुराई ही सब प्रजा का पालन करना, उससे कुछ नहीं पैदा होती है। तो दाक्ष्य में और युद्ध दो में पैदा है, नौ धर्म में पैदा है ही नहीं। अरे कृषि करो तीन पैदा ही पैदा पूरी, खेती करो, पशुपालन करो, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, ये तो धर्म पैदा करने वाली चीज खास, ये वेशों के लिए दिया गया। तो उनके भी तीन है और सूर्य का तो एक ही परिचर्यात्मक हम कर्म सूर्य स्वभाव जम। अब सूर्य भी इतने बता करके फिर बताया, बड़ा विलक्षण बात बताई है, आप ध्यान दो। ये स्वे कर्माणि अभिरता सन सिद्धि लभते नर, स्व कर्म निरता सिद्धि यथा विन्दत सर्वं, किस प्रकार प्राप्त हुए कि यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्व विदंततम, जिससे संसार पैदा हुआ और जिससे संसार व्याप्त है, वो व्याप्त है पैदा हुआ उस परमात्मा का पूजन करे तो किससे करे, स्व कर्म ना कर्मे धैर्य। तो ब्राह्मण नौ धर्म से पूजन करे, क्षत्रिय सात धर्म से पूजन करे और वैश्य तीन धर्म से पूजन करे और वैश्य सेवा से पूजन करे। तो पूजन करने में भी पूजन करने से कल्याण होता है, इसे कल्याण नहीं होता, चारों वर्णों का कल्याण हो जाए भगवान के पूजन करने से होता है। और भगवान का पूजन करे तो उनके पूजन ही कर्म है, न ब्राह्मण के न क्षत्रिय का न वैश्य के, सूर्य के परिचर्यात्मक कर्म, कर्म ही तो पूजन, अरे पूजन से पूजन तो डबल पूजन होगा उसका, जल्दी कल्याण होगा, क्यों कर्म ही पूजन है। बोला कर्म पूजा के द्वारा, पूजा ही करनी है तो उसका कल्याण जल्दी होगा, इतना किसी पर नहीं है। इस वास्ते नीचे को तो दया की गई है, कृपा की गई है, इस पर किसी का तिरस्कार अपमान नहीं है और बीच में छोड़ा ऐसी बात नहीं है। ये बात है, अब इसमें शंका बोलो।
हो गया
वाह, फिर बोलो।
साथ में नीचे का किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य आपने कर दी,
किम पुनः दोनों आ गया ना, मैं आसन से भी अच्छे जन्म से भी अच्छे,
अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व।
हाँ, ये सबके लिए, ये जो सातों बताओ उनके लिए, सातों के लिए है ये अनित्यम असुखम, यहाँ सुख मत भोगो जल्दी करो, देरी मत करो। दो बात, एक तो सुख भोग के लिए खोटी मत हो, एक देरी मत करो, अनित्य है, कब मर जाए क्या पता है। तो ये सबके लिए, ये भी उपाप होने स्त्रियों के साथ सब भजन समा भजन करो। भजन क्या करें जब मन मना भो मत भक्त हो मत जाति मांग नमस्कुरु मांग महात्मा नो मत पलायना एवं मत पलायना से मेरे प्राण में रूप प्राप्त हो जाए। ये साधु बताया, वो साधन सबके लिए, मन मना भव मत भक्तो मत जाति मांग नमस्कुरु, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य हरिजन जो कोई ज्ञान हो सबके लिए बात है। तो ये भजन सो मां मेरा भजन करो, देरी मत करो, अनित्य है, असुख मानो सुख में मत लोग, सुख है नहीं इसमें, ये दुखालय में शाश्वतम है, इसमें सुख ढूंढते हो गलती करते हो, इस बात से मेरा भजन करो। ये सब के लिए बात बताइए, इमं प्राप्त मनुष्य, अरे मनुष्य शरीर मेरा, मनुष्य शरीर, पशु पक्षी होते, कोई देवता होते, राक्षस होते, असुर होते, भूत प्रेत होते, तुम्हारे पता नहीं, इमं प्राप्त ईश्वरी को प्राप्त होकर के मनु शरीर को प्राप्त, इसको प्राप्त कल्याण करो, अपना कल्याण का मौका है। इस वास्ते इमम का तीन पद दिए, अनित्यम असुखम इमम ना जाओ।
दूसरा प्रश्न कहते हैं, आपने जनेऊ के लिए कहा है, लेकिन हमारे भाई पिताजी बहुत जनेऊ लिए हुए, संध्या गायत्री भी करते हैं, परंतु आज तक उनके कोई स्वभाव में फर्क नहीं पड़ा, इसलिए जनेऊ लेने की इच्छा नहीं होती, क्या करना चाहिए?
स्वभाव नहीं होता, संस्कार होता है। उस संस्कार में क्या फर्क पड़ा था? नामकरण करने से बच्चे में क्या फर्क पड़ता है? छुआ कर्म करने से बच्चे में क्या फर्क पड़ता है? विवाह होने से बच्चे में क्या फर्क पड़ता है? ये जितने कर्म है, ये अपने जात कर्म है, उसे क्या फर्क पड़ता है? ये संस्कार होते हैं, संस्कारों का जल्दी हरेक को पता नहीं लगता। संस्कार शुद्ध होते हैं तो विचर्ष शुद्ध हो जाते हैं। उसे आप कहते हो सत्संग करते हैं, इनमें शुद्ध नहीं हुए, तो सत्संग तत्परता से करते नहीं, पालन नहीं करते। नहीं तो मेरे विचार सब जीवन मुक्त हो जाए अभी अभी सभी, पर पढ़ुआ ही नहीं है। बात कहते हैं, बार बार सुनाते हैं, मैं तो जोर लगाता हूँ, मैं तो अपनी दृष्टि से खूब जोर लगा कर कहता हूँ, ऐसे कहने के लिए भी मैं तो अपनी कमी नहीं रखता हूँ, फिर भी मुश्किल क्या कानपुर जो भी नहीं रहेंगी। अब तो कल्याण नहीं होता, उस आचरण की कमी है, संस्कारों की कमी नहीं है। बाप दादा ने, बाबल भाइयों ने जनेऊ ली तो जनेऊ का पालन कितना करते हैं, गायत्री का जप कितना करते हैं, जो गाने वाला की रक्षा करे उसका जप कितना करते हैं, मात्र छोटा सा कर दिया जितने, तो संस्कार से तो पवित्र इतना तो हो गया। अब आसन करेंगे विशेष हो जाएगा, तो संस्कार तुम्हें सहायक होंगे। संस्कार मात्र से कल्याण थोड़ी हो जाता है, कल्याण मिलेगा संस्कार मात्र से। आचार्य इन पुनंती वेदा, वेदों की बड़ी भारी नियम है, आचरण कोई पवित्र नहीं करते, तो चाचा ताऊ भाई आदि है जिन्हें लिए बने आचार्य ही, उनको कैसे कल्याण कर देगी गायत्री, कैसे 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 हुआ भी कैसे कल्याण कर देंगे? आचार्य ही नंग पुनंती वेदा, वेद युद्ध धर्म नहीं कर सकते, ऐसी बात है। तो आचरण में लाओ, अपन आत्म लाने के लिए जिन्हें वो संस्कार है ये पवित्र करता है। जैसे आप रसोई बनाते हो तो माताएं बहन रसोई बनावे, रसोई बनाने में अपने तपेली है, भरतिया है, ये तपेली आदि लेती हो जिससे रसोई बनती है, तो रसोई बनने पर रसोई बना देते, बनाने पर भोजन करते, बने भोजन कर मांझते हैं, उसको मांझ करके साफ करते हैं, साफ कर रसोई बनाते हैं, फिर रसोई बनाते हैं, उसको साफ करते हैं, तो साफ क्यों हो गई? रसोई बनाने में धुआं भी लगा, अन्न भी लगा, आंच भी लगी, काम हुआ तो बर्तन थोड़ा कम हो गया, अच्छा नहीं वाले मलिन हो गया, तो उसको मांझ करके साफ करो। इस तरह से शाम को आपने संध्या करी, अरे उसे करते करते सुबह तक आप रहे, तो सुबह तक आपकी आनुषंगिक पाप बन गए, आपके पाप करने की रुचि नहीं, इच्छा भी नहीं, उद्देश्य भी नहीं, परंतु तो स्वाभाविक पाप बन जाए तो सुबह की संध्या से वो नष्ट हो जाता है, और दिन में भूल भाल से कोई पाप बन जाए तो शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। तो संध्या करने से पवित्रता आती है, और पवित्रता आदि नहीं, सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य का नाम मंदेहा नाम राक्षस है, मंदेहा वे राक्षस वो सूर्य को घेर लेते हैं, जैसे बाल सूर्य घेर कीचड़ बनाता है ऐसे घेर लेते हैं। तो ये जो संध्या करने वाले हैं, संध्या करके जो अर्घ चढ़ाते हैं वो वज्र हो जाते हैं, वज्र की तरह उन संपूर्ण राक्षसों को नाश कर देता है, तो सूर्य भगवान की मदद होती है, उसे सूर्य सबको वर्षा करके तृप्त करता है। भर्गो देव से धीमे बताया ना, तो सूर्य भगता है तब सवितम, वो सविता है, सविता नाम सब पैदा करने वाला, ये नाम सूर्य भगवान का है, तो सबको पैदा करता है और सबको निरोगता देता है। आरोग्यम भास्करा दिच्छेद, आरोग्य है वो सूर्य से मिलती है, निरोगता जहाँ सूर्य का घाम पड़ता है रोग नष्ट हो जाते हैं। बरसात के समय वर्षा होती है, बीच बीच में कई दिन वर्षा नहीं होती, उसको मारवाड़ी दांगली गए, दांगली पड़ गई बीच में, तो भाषा नहीं हुई तो नरसा नहीं होती, छूल तपता है, उससे सब उनके जहर है उखड़ जाते हैं, फिर साफ होते, फिर वर्षा बरसती है, तो घाम भी आवश्यक है, वर्षा भी आवश्यक है। एक हमने बात सुनी है कि उस संत थे, वो गांव में विचरते थे, तो गांव महाराज में कदूसी मंत्र मेरे लाभ काम पड़ा है, हमारे बड़े गुरु भाई थे एक राम राम जी, राम जी राम जी राम 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 जी राम जी, बूढ़े संत थे, भिक्षा को जाते राम जी करते ही रहते, कि बाबा जी मैं कर दोषी उसी ले भाई उसी राम जी कर सी राम दोषी महाराज मैं कर दोषी, अब जब जब दिल पूछ चिड़ गए एक दिन, मैं कर दोषी मेरी खाद में ले निकाल ले कर दोषी मेरी खाद में मैं उसी राम जी कर दोषी खाद में थोड़े थोड़े तो हमारी सगा लोग मैं ज्यादा पूछे गांव में जो खेती करना है उनकी खेती से जीविका होती है, तो मैं पूछ रहा था एक साधु से, उन्होंने विचार किया कि ये मैं हो जाए तो लोग सब सुखी हो जाए, तो उसने तपस्या करी भगवान से प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हुए, तो वो लोग क्या चाहते हो, ऐसे वो उत्तंग मुनि का भी वर्णन आता है, मारवाड़ मालूम होता है कवाला जी के पास यही था उत्तंग मुनि, उसने वर्षा मांगी भगवान से, तो महाराज वर्षा हो जाए तो तू क्या चाहता है, कि महाराज मैं चाहूं तो वर्षा हो जाए, तो ये घूमते रहे जो कहा कि महाराज मैं कदू से भगवान करो वर्षा कर दी, फिर बार बार वर्षा कर दी तो घास और धान में खूब पैदा होया, परंतु उसमें जहर पैदा हो गया, अब पशु भी मरने लगे, मनुष्य बीमारी पड़ने लगे, ज्यादा वर्षा बीमारी ज्यादा होती है हम लोग सब जानते ही है, तो वो जहर हुआ बीच में वर्षा न होने से सूरज उन जहर को मिटा कर ले साफ कर लेते हैं, जिनसे शुद्धि हो जाती है, कह जब हो गए सब लोग पड़ापड़ मरने लगे, भगवान ने कहा महाराज ये क्या किया, कि तू कहता वर्षा कर दू, वर्षा करने से तेरी मनता ही वर्षा होने से खराबी होती है, मनुष्य चाहना करता है उस ठिकाना तो है नहीं, क्या चाहना करनी क्या नहीं करनी चाहिए, तो चाहना मत करो, फिर भगवान का जो ठीक करे तो हमेशा मरहत वर्षा कर ही दो, अब देख ले कर रहा क्या हुआ, कठिन लोग मरेंगे, इस वास्ते बीच में वो जान भी आनी चाहिए, बीच में वर्षा भी होनी चाहिए, भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं, अब सूर्य मार दो सूर्य गर्भ में तो गर्भपात कर दो, भयंकर दशा होगी, देखना पैर जिन गर्भ कराने हैं उनके अगली जन्म में पाप पैदा नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा उनको बालक भी, क्योंकि बालकों को तो अब चाहते नहीं, गिरा देते हो और नसबंदी करते हो, ऑपरेशन करा लेते हो, फिर साथ हमारा बच्चा होगा, तुम बच्चों के साथ अत्याचार करते हो तो बेटा होगा नहीं, आपके संतान हो जाएगा नहीं होगा। लक्ष्मी जी खुद ने अपना गर्भ धारण किया, उसको लिखा करके जल में ब्रह्मांड हुआ हजार वर्षों तक, उसके बाद ये ब्रह्मांड हुआ जिन सृष्टि उसी हुई, परंतु गर्भ गिराने के कारण लक्ष्मी जी का बेटा हुआ ही नहीं, जन्म भर में गर्भ गिराने लक्ष्मी जी नहीं हुआ, लक्ष्मी से अंश लेने वाली आठ संख्या उनके आठ संख्यों के नहीं हुआ, कोई बच्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि गर्भ गिरा दिया इस वर्ष नहीं हुआ, ये आता है ब्रह्म वेवर्त पुराण में वर्णन आता है, तो इस तरह से गर्भ गिराते हैं तो तुम्हारे बच्चा चाहते हो, बच्चा होगा तुम्हारे, अब कभी नहीं होगा बच्चा, तुम बच्चे को गिराते हो, जो चीज का दुरुपयोग करे उसको पसंद नहीं मिलता, मनुष्य जन्म पा करके अपना कल्याण नहीं करता उसको जन्म पैसा नहीं मिलता, आप भी बच्चों को लड्डू देते हो, वो लड्डू दे पैसा भी नाली में फेंक दे, उसको बच्चे को लड्डू दोगे कि थाप दोगे मरो, दुरुपयोग तो ऐसे मनुष्य शरीर मिला सदुपयोग करने के लिए, बच्चे आपके पैदा होते भगवान के देने से, भगवान ने नाम दिए, यशोदा मैया ने कहा कि माता जी क्या है, मैं तो गिरिराज की कृपा से एक छोटा सा गुवार आया है मेरे घर, गिवान है गिरिराज की कृपा से, तो कृपा मानते शत्रु पुत्र होने में न होने में, ये कलयुग की भ्रष्ट बुद्धि हो गई है, वो कहने वाले कराने वाले प्रचार करने वाले राज्य करने सभी के बुद्धि उस पटकी पड़ गई कलयुग की, इस बार तो उनकी बुद्धि हो गई, एक स्त्रिया मानती नहीं, कहना नहीं मानती, पुरुषों से बंद करके अपना प्रकट करा लेती है और अपना गर्भ गिरा देती है। तो तुम्हारी दशा क्या दशा होगी वो होगा तो देखना, अब क्या पता है। बाबा जी ऐसा किया कि बेटा सूखा के जब बूढ़ा अब जी जी ला है, फिर देखना तमाशा क्या होगा। अगर पाप करते प्रापरों ही नहीं कर रहे तो आप ऐसा प्रचार मत करो, अन्याय मत करो, मन जन्म मिला है तो अच्छे से कल्याण करो, ऐसे अच्छा संग मिल जाए, अच्छा मौका मिल जाए, अरे उससे लाभ नहीं उठावे, उसको अच्छे संग नहीं मिलेंगे। जो नौकर अच्छा है और उसका मालिक तिरस्कार करता है उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और अच्छा मालिक है दयालु वो सेवक नौकरी करने वाला तिरस्कार करता है तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। ये जल कल छोड़ दे खुले उसको पानी के बिना सब मरना पड़ेगा, ऐसे अन्न है उसमें बर्फ ही मना जिसकी हरियर होता है नोजा पिस्ता, पिस्तों की बर्फी और बिदाम की बर्फी वो खाते छोटी छोटी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लोग कहेंगे नृत्य है छोटी छोड़ते हैं, अन्न मिल गया मुश्किल होगा, भूखा मर के मरेंगे मेरा गाड़ी, ऐसे तिरस्कार करते हैं तो उनको रोटी रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने ऐसे तिरस्कार किया है। ऐसे अच्छा संग करते हैं, अच्छे संग से जो उद्धार हो जाए वो नहीं करता है तो अच्छे संग नहीं मिलेंगे, अच्छे संत नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम दुरुपयोग करते हो, उसका काम देते नहीं हो, फिर तुम वो चीज दी जाएगी नहीं दी जाएगी। इस वास्ते जो मिला हुआ है अवसर इमं प्राप्ति भजन स्वमान, इससे वो प्राप्त हुए है भजन करने को, कमोन भूल गमाई है यो सन भजवे जो यो भजन करने लायक है, इस वैसे मत खो, ये मतलब है। और बोलो थे का ही करो, लड़का में जाओ सीधा मन पधारो, धर्मराज कविंद माता ने ये जीवराज जी आप तो नर्क पूरी पधारो, अब तो मन नर्क पूरी क्यों भेजो छो, मैं तो बटे काम कियो भगवान ने फरमाया गीता भागवत ग्रंथ पढ़ लिया, फिर मैं तो सब मनोरदास के लिए सौंप दिया है, सुनिया नहीं धर्मराज जी कागत है धर्मराज जी होगा सत्यादी चौकीदार से मनोहरदास मुदय मुसे तो मनोहरदास जी से दस इंद्रिय से तो भक्तियां से कोटि है ये तो वनस्पति से और काम सिंह काम है क्रोध है तो क्रोध सिंह कोटवाल से और भरम सिंह भोगियों से और लोभचंद जी सेठ से कृष्णा सुमान दो सेठानी से कृष्णा सुप्रिया सेठानी शीर पर दीनी से कुमता दासी से कपट सिंह कलेव से सवा कपट करता रहता से ऐसे लोग जंजी शेर सब काम करेगी ये बताया सब ये है। तो पता दूसरा भगवान ने पूछा कि इतना काम किया उसमें आपने कल्याण नहीं किया अपना तो हमसे नर्कपुरी पधारो, तो नर्कपुरी पधारो सा वहां था न तो है हम और बोलो अब सुना कीर्तन सुना दे मैं तो पूछते मैं मानता हूँ ये उपजे है